Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui aarthik, share bazaar aur karobar jagat se lekar khabrein hazir hain. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद मनोज जी.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग.
थैंक यू मनोज. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस क्लोज विद लॉसेस. सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 25,600. Major Asian stock markets end in negative territory and global crude oil prices fall over 1%.
घरेलू शेयर बाजार में बिकवाली से प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 500 अंक से अधिक फिसला. निफ्टी 25,600 के स्तर से नीचे दर्ज हुआ. एशिया के प्रमुख बाजारों में भी गिरावट का रुख दिखा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम 1% से अधिक घट गए.
Well, before we get off to the start of the program, let's have an announcement for you, friends. Well, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
आइए इस सलाह के बाद शुरुआत करें घरेलू शेयर बाजार से जहां आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही है. कारोबार की शुरुआत हालांकि बिना किसी खास उतार चढ़ाव के देखी. कुछ देर के लिए बढ़त भी रहा, लोगों की खरीदारी रही, लेकिन उसके बाद एक बार जब गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ तो लगातार बाजार नीचे आते रहा. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 519 अंक यानी 0.62% घाटे के साथ 83,459 दर्ज हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 166 अंक यानी 0.64% कम होकर 25,598 पर बंद हुआ. छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों पर ध्यान दें तो वहां भी बिकवाली तेज रही. बीएसई मिड कैप इंडेक्स में लगभग 0.3% की गिरावट हुई. स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% घाटे के साथ बंद हुआ.
Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, opened on a flat note today, briefly moved into the green but were unable to sustain the gains and declined throughout the day. The Sensex shed 519 points or 0.62% to close at 83,459, while the Nifty dipped 166 points or 0.64% to settle at 25,598. In the broader market indices at the Bombay Stock Exchange closed in negative zone. The mid-cap index lost around 0.3% and the small-cap index fell 0.7%.
सेंसेक्स पैक पर ध्यान दें तो 30 में से 25 कंपनियां घाटे के साथ बंद हुई. सबसे अधिक नुकसान पावर ग्रिड को हुआ जिसके शेयर 3.1% से अधिक नुकसान में रहे. इटरनल के शेयर 2.8% नीचे आकर बंद हुए. टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के शेयर 2.5% से अधिक नुकसान में रहे. लाभ उठाने वालों में टाइटन कंपनी सबसे ऊपर रही जिसके शेयरों में 2.3% की वृद्धि हुई. भारतीय एयरटेल को 1.9% का लाभ हुआ. बजाज फाइनेंस के शेयर लगभग 1.2% बढ़त के साथ बंद हुए.
Among the sectoral indices at the BSE, 19 out of 21 sectors ended with losses. Among the top laggards, utilities dipped around 1.6%, metal lost 1.4% and commodities as well as focused IT both slipped 1.1%. In the gainers, telecommunication rose almost 1% and consumer durables moved up 0.1%. The overall market breadth at the PSE was negative as shares of 2,549 companies declined and shares of 1,618 companies advanced, while shares of 162 companies remained unchanged.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 12 पैसे मजबूत हुआ, 88.66 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की छह अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 99.99 पर चल रहा था. ये तो ही आज की खबर, लेकिन हम कल की भी जानकारी आपको देंगे. कल घरेलू शेयर बाजार श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सभी प्रकार के कारोबार स्थगित रहेंगे. सामान्य कामकाज 6 नवम्बर को शुरू होगा.
So Vishal, can we say that no news is good news, because Sensex shedding 519 points isn't much really, and at 83,459 we are good.
Well, yes, we're good. If you don't want to say it like that, we'll say we're not bad as well, because you know, markets sometime, Lalima ji, not sometimes but always, you know, respond to some cues or some triggers. Unfortunately, today was the day when the global cues were very weak. So there was nothing to respond to in terms of, you know, going beyond the expected levels. And apart from that, you know, when we look at the domestic cues as well, there was nothing strong coming along the way. So it was a profit booking time, and for the past few weeks, you know, there has been a lot of movement in the mid cap and small cap segment as well. So it was time for you know, some of the investors to go ahead and start doing their profit booking, and that has resulted in that slide again in the Sensex index which we are looking at. But largely, you know, if we look at the FIIs, then they continue to, you know, pull out money. Now, the reason behind that is not domestic. The reason behind that is international, because the U.S. bond yields are rising. And that is making, you know, things a little bit more interesting for the FIIs. Perhaps they are exploring other options as well. This is a circular process which keeps on happening. If we go and look back at the data, whenever, you know, the global cues are strong, the FIIs will withdraw. Whenever the domestic cues are stronger than the global cues, the FIIs will make a re-entry. Or if in the global markets, you know, the indications are not very positive for the foreign investment, you know, foreign institutional investors, then, of course, they'll come back to the safe haven, which is India. So that's how things work. And all these numbers should be looked at. When I say all these numbers should be looked at in its holistic view, rather than just looking at one session or two sessions or five sessions or maybe 10 sessions.
Pradeep ji, aapne ek badi rochak si jankari di FIIs ke nazariye se ki Bharat ka bazaar unke liye safe haven hai. Kis tarah, thoda ise hum shrotaon ke hit mein aur samajhna chahenge ki kis tarah unka jo nivesh, unka aana aur jana, यानी लगातार वो बिकवाली, यानी यहाँ से पूंजी हमारे बाजार से निकाल रहे हैं, उसके बाद फिर लौट रहे हैं और फिर पूंजी कमा के जा रहे हैं, तो किस तरह उनके लिए बाहर, यानी अपनी जो बाजार है वो उनके लिए सुरक्षित स्वर्ग कैसे बन रहा है?
देखिए, उसके पीछे हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़े हैं, क्योंकि जब FIIs किसी देश में या किसी बाहर के बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो वो केवल उस बाजार को नहीं देखते हैं, केवल उन कंपनियों को नहीं देखते हैं या उनकी आर्थिक दशा को नहीं देखते हैं जिसमें उनको इन्वेस्ट करना होता है. वो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ नजर डालते हैं, उस पर गहन चिंतन करते हैं, उसकी रिसर्च करते हैं, उस देश की पॉलिसीज क्या हैं, बेसिक फंडामेंटल्स उस देश की अर्थव्यवस्था के कितने मजबूत हैं, और ये सब जो पैरामीटर्स हैं इन पर भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अपनी मजबूती कायम रखे हुए है. अगर हाल ही के आंकड़ों की बात करें, और क्यों मैं इतना आश्वस्त हूं कि यही FIIs के आंकड़े जो हमें जाते हुए दिख रहे हैं वो अगले 15 दिन में आते हुए भी दिखेंगे, क्योंकि आप भारत की अर्थव्यवस्था के दूसरे आंकड़ों की तरफ गौर करिए. मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े देखिए, उनमें बढ़ोतरी हुई है. उसके अलावा जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े देखिए, उनमें बढ़ोतरी हुई है.
right.
और ये जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक आंकड़े हैं, जो ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में कितना मूवमेंट है, कितना सर्कुलर मूवमेंट है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कितना पैसा लोगों की कुवत है कि वो उस पैसे को खर्च कर पा रहे हैं, क्या लोगों के पास पैसा है भी खर्च करने के लिए, लिक्विडिटी है या नहीं है. तो ये सब जो चीजें बेसिक फंडामेंटल्स जो कि कोई भी इन्वेस्टर देखना चाहेगा इन्वेस्ट करने से पहले, उन सब फंडामेंटल्स पे भारत की अर्थव्यवस्था खरी उतरती है. अब मार्केट कभी 100 पॉइंट गिरा या कभी 500 पॉइंट गिरा या कभी 1000 पॉइंट भी गिरा किसी दिन, तो केवल उसे अगर आधार मान के कोई फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चलेगा या कोई बड़ा इन्वेस्टर चलेगा, मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. क्योंकि उनकी एक केवल शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी नहीं होती, उनकी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी होती है. शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के तहत वो देखते हैं कि अच्छा, अगर यहां से 1 रुपए का फायदा शायद बाहर दूसरे बाजार में हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए वहां मूव करेंगे. लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से मेरा मानना है कि अभी भी FIIs के लिए और DIIs के लिए भी भारत से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या भारत से बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए जगह.
And I think we are, our markets are reasonably insulated considering the fact, Vishalji, that we've had this tariff war, quote unquote tariff wars, coming for a long time. Yet we see that we have managed to find new markets for our exports pretty soon. If it's not US and Europe, there are other countries which have come up on the list, and we are exporting pretty well now. That shows how well we have managed, not just our internal consumer-based economy, but beyond that as well.
Well, it is indeed. And also, you know, you add on a few more things to that in terms of how our markets, our economy handle the global, tailwinds. I won't call them headwinds because they don't come, head on at us, but tailwinds only. And do compare it with the global markets. In fact, if you take the scenario of today itself, you know, there is a tumble down effect in the global markets today. Almost all markets have come down. Now, the reason behind that is, again, the global cues. There are expectations in the US markets that, you know, there might be some correction there, specifically in the IT sector, in the AI sector as well. So that is one aspect. Second aspect is a strong dialogue or strong statement coming in from Mr. Powell in the Federal Reserve, saying that there might be less chances of a second rate cut. They've gone down from 90% to 71% now. So if the second rate cut doesn't happen, that doesn't augur well for the US stock markets. That doesn't augur well for the other Asian and European markets as well, because there is no big shock absorber there. Out here we do have it. DIIs are our biggest shock absorbers.
Exactly.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. और श्रोताओं, हमारे विशेषज्ञ ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय बाजार की तुलना में अन्य बाजारों में बिकवाली कहीं आज अधिक रही है. यदि हम अपने पड़ोस एशिया के ही प्रमुख शेयर बाजार देखें तो वहां भी अच्छी खासी बिकवाली रही, खासतौर से दक्षिण कोरिया में, जहां कोस्पी सूचकांक 2.4% लुढ़क गया. जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 1.7% से अधिक की कमी आई. हांगकांग का हैंग सेंग 0.8% लुढ़क गया. सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स में 0.5% की कमी लगभग दिखी है. और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 0.4% घाटे के साथ बंद हुआ. यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक गिरावट का ही रुख दिख रहा था. फ्रांस का कैक 40 लगभग 1.3% नुकसान में चल रहा था. लंदन के फुटसी 100 में 0.6% की कमी थी, जबकि जर्मनी का डेक्स भी लगभग 1.4% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था.
Here's a look at the US markets now. Well, Wall Street closed mixed yesterday, with investors moving into the artificial intelligence sector following a number of deal announcements. Among the major indices, the tech-heavy Nasdaq Composite Index settled around 0.5% higher, while the S&P 500 gained nearly 0.2%. In contrast, the Dow Jones Industrial Average dipped by almost 0.5%. How do you see the US economy, Vishalji?
Well, it's going through a lot of upheavals because on the one hand, there were expectations which were set in when President Trump took charge of the country that the tariff imposition by the Trump administration will bring in more money, more investment to the domestic market that will result in more jobs, lesser unemployment rates, perhaps keep the inflation also in check. But that doesn't seem to be the situation on the ground so far. And rightly so as well, because one, none of these, tariff wars between US and the major economies or even the smaller countries as well have been resolved successfully so far, entirely successfully.
Mm-hmm.
So that is why, it is really, really important to understand that the U.S. economy will continue to have these moments wherein we might see it going on a very positive trend, but then things will perhaps come down again. The dollar is getting stronger in the past few weeks, and that's something which must be a sort of a respite for the policymakers in the U.S. economy. Mm-hmm. But the unemployment rates, the inflation rates, those are some points where a lot of focus has to be given, and that is why we see that hawkish stand coming back from the Federal Reserve's governor.
Right. Well, the National Stock Exchange, NSE, has announced to introduce pre-open session in futures and options to enhance price discovery. The NSE will roll out a 15-minute pre-open session for equity futures and options starting from the 8th of December this year to enhance price discovery, improve transparency regarding gap movements, and manage volatility. The pre-open session is a 15-minute call auction window from 9 a.m. to 9:15 a.m. to determine opening prices for index and single stock futures prior to the regular trading session. According to a circular released by the stock exchange, this session will allow order entry, modification and cancellation until a random closure between 9:07 and 9:08 a.m. Price discovery and trade matching will occur until 9:12 a.m., followed by a 3-minute buffer that will transition the market to continuous trading at 9:15 a.m.
यहाँ पर समझना चाहेंगे कि मतलब NSE का जो ये कदम है प्री ओपन सेशन का वह क्या है और किस तरह ये प्रभावित करेगा और सबसे बड़ी बात कि इस कवायद की जरूरत ही क्यों पड़ी
देखिए इसको सीधे सीधे एक और कॉन्सेप्ट से जोड़ के देख लेना चाहिए
जी.
एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है
जी.
तो ट्रेड सेंसेक्स में भी बिजनेस होता है ट्रेडिंग होती है
जी, जी, जी,
तो एक तो उसकी ईज कैसे और खासतौर पर जब F&O की जब हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं और दूसरा इससे जो आपाधापी मची रहती थी और उस आपाधापी के चलते कई बार हम पढ़ने देखने सुनने में भी आता था कि भाई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो है इस वजह से ये हो गया तो उसका ऑप्शन उसके चांसेस कम रहेंगे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट का समय और रहेगा पहले वो उसमें कुछ करेक्शन करना चाहें उसमें कुछ और ऐड करना चाहें उसमें से कुछ हटाना चाहें तो वो 15 मिनट का समय रहेगा और इसमें देखिए बड़ा बेहतरीन तरीके से दिया गया है कि कितने मिनट से कितने मिनट तक क्या
जी,
काम
जी.
हो सकता है चार बड़े मेजर काम है जिनके लिए 15 मिनट की जो विंडो है उसमें से सेबी ने रखा है कि साहब आप इतने मिनट से इतने मिनट तक ये कर सकते हैं और इतने मिनट से इतने मिनट तक ये कर सकते हैं तो इसके और खासतौर पर एक ट्रायल सेशन भी रखा जाएगा जिसमें ट्रेडर्स इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो ये बेहतर होगा उन लोगों के लिए जो कि F&O में डील करते हैं
जी यानी काम सुचारू हो उस दिशा में एक पारदर्शी कदम कह सकते हैं श्रोताओं आज शेयर बाजार से हम खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी पुराने स्टॉक ब्रोकर नियमों में व्यापक बदलाव के जरिए बाजार मध्यस्थों की निगरानी को और कड़ा करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है ये कदम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में कई तकनीकी रुकावटों के बाद उठाया गया है सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे ने आज मुंबई में एक सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि नियामक बाजार में लचीलापन बढ़ाने के लिए जोखिम प्रबंधन डेटा सुरक्षा अनुपालन और निवेशक शिकायत निवारण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है
ईच ऑफ दीज इनिशिएटिव्स वेदर सिंप्लीफाइंग कंप्लायंस रैशनलाइजिंग रेगुलेशन और ईजिंग इन्वेस्टर एक्सेस एम्स टू मेक आवर मार्केट्स मोर एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव As we chart the road ahead, I urge each of you, the institutions that form the backbone of our markets, to lead in governance, in innovation, in culture, and in collaboration. Because when our financial institutions lead with integrity, markets follow. And when markets follow, the economy thrives.
So we can say that SEBI is now evolving and trying to keep up with the times and trying to regulate and trying to be more efficient. Can we say that?
Well, indeed, because that's the need of the hour. You know, with each passing day, the regulators will have to think of ways, innovative ways to go ahead and ensure that they not only ensure ease of doing business, but they also ensure transparency. They also ensure smoother ways of, you know, doing transactions and business on the Sensex with the technology involved as well. And that's what the task ahead is.
28 अक्टूबर को एमसीएक्स में हाल ही में हुए चार घंटे के कारोबारी व्यवधान के मसले पर चर्चा करते हुए श्री पांडे ने कहा कि एक विस्तृत जांच और मूल कारणों का विश्लेषण चल रहा है. उन्होंने ऐसी घटनाओं की आवृत्ति पर चिंता भी व्यक्त की.
On the trade front, India is making significant strides for deepening economic partnerships, creating new employment opportunities, and fostering pathways for shared growth. In a major development, Minister of State for Commerce and Industry, Jitin Prasada, today held a bilateral meeting with Romania's Minister Oana Silvia Teo in Bucharest. The Ministry of Commerce and Industry said that the discussions during the meeting focused on expanding trade, attracting investment, and strengthening resilient supply chains within the broader India-EU economic framework.
India and Romania have agreed to work towards the conclusion of a fair, balanced and mutually beneficial India-EU Free Trade Agreement, FTA, within this year. Both sides agreed to deepen supply chain linkages in priority sectors such as petroleum products, engineering goods, pharmaceuticals and ceramics. Romania, which needs about 1 lakh non-EU workers annually, is keen to tap into India's skilled workforce. Yesterday, it announced its readiness to employ 30,000 skilled Indian professionals every year. According to the Ministry of Commerce and Industry, India's exports to Romania crossed $1.03 billion in financial year 2024-25, while overall bilateral trade reached about $2.98 billion in financial year 2023-24. Meanwhile, a senior team of negotiators from the EU is in New Delhi for discussion with their Indian counterparts on the proposed India-EU Free Trade Agreement. The engagements aim to resolve key outstanding issues and advance the agreement towards a balanced and equitable framework that benefits both sides. While these negotiations are underway in New Delhi, India is simultaneously deepening its trade engagement in New Zealand. The fourth round of negotiations for the India-New Zealand FTA have commenced in Auckland. The negotiations in this round are focusing on key areas, including trade in goods, trade in services, and rules of origin. Both sides are working constructively to build on the progress achieved in earlier rounds to reach convergence on outstanding issues and move towards the early conclusion of the FTA. Ayushi Singh for Market Mantra.
Well, moving on, Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy today launched the third round of the Production-Linked Incentive Scheme for Specialty Steel, PLI 1.2, in New Delhi. Speaking at the event, Mr. Kumaraswamy said that the scheme, with a total outlay of more than 6,300 crore rupees, aims to add about 26 million tons of specialty steel capacity in the coming years. Also, Secretary of the Ministry of Steel, Sandeep Paundrick, today said that India aims to achieve 300 million tons of steel capacity by 2030 and 500 million tons by 2047. The Secretary said this while addressing the inaugural session of the CII Steel Summit 2025 in New Delhi today. Mr. Paundrick called the steel industry the backbone of the national economy and a key enabler in realizing the vision of Vikasit Bharat.
Aayye, khabron ka silsila aage badhate hain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी उत्सव के अंतर्गत लागू की गई संशोधित दरों से देशभर में कई क्षेत्रों में लोगों को लाभ हो रहा है. आज हम बात करते हैं कैसे अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से केरल की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.
नए जीएसटी सुधार केरल के किसानों, कारीगरों, तटीय समुदायों और छोटे उद्यमियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। प्रमुख क्षेत्रों में जीएसटी में कटौती करके इन सुधारों ने उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों को किफायती बनाया है और व्यापारियों के मुनाफे को बढ़ाया है। केरल का काजू प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें लगभग 3 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें अब 5% जीएसटी लग रहा है, जिससे प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यात इकाइयों की लागत में कमी आई है। इसी तरह वायनाड के आसपास के कॉफी क्षेत्र को भी बड़ा लाभ हुआ है, जिसमें इंस्टेंट कॉफी और उससे बनी चीजों पर कर की दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। मसाला क्षेत्र में मालाबार काली मिर्च पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे छोटे पहाड़ी कृषि उत्पादकों और प्रसंस्करण समूहों को लाभ हुआ है। इस बीच मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे राज्य में उत्पादों की मूल्यों में कमी आई है। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर अब 5% कर लग रहा है, इससे लागत पर 6 से 11% की बचत हो रही है। इन सुधारों ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रों पर कर को बोझ को कम कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य केरल के ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। समर्थ रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
यहाँ पर विशाल जी, जीएसटी पर ही चर्चा को करना चाहेंगे। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। इस 1 महीने का यदि हम देखें विभिन्न क्षेत्रों में, तो जीएसटी में इस परिवर्तन का क्या लाभ हुआ?
देखिए, अबसे थोड़ी देर पहले ही मैंने जीएसटी के आंकड़ों का जिक्र किया था। जी। और जब देश का जो महत्वपूर्ण टैक्स का हिस्सा हो, अगर उसकी जो कलेक्शन है उसकी ग्रोथ में बढ़ोतरी हो, नंबर एक, और बावजूद इसके कि सरकार ने ये फैसला लिया हो कि हम जो टैक्स की दरें हैं उन्हें कम करेंगे, तो इसका मतलब ये आपकी अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का जो आधारभूत ढांचा है उसकी मजबूती को दर्शाता है। नंबर दो, ये भी दर्शाता है कि जो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, उसमें हम अभी भी मजबूत हैं, यानी कि कंजम्पशन की जो हमारी ताकत है वो अभी भी बनी हुई है। नंबर तीन, इसका सीधा फायदा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलता है, क्योंकि अगर हम खरीद रहे हैं तो उसे कोई बना भी रहा हो। तो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, जिसके तहत ये जो आंकड़े जिनकी बात हो रही है, या ये जो 1.5 महीने का जो समय रहा इन बड़े रिफॉर्म्स, जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद, उसमें ये बात साबित हुई कि ना केवल आधारभूत ढांचा अर्थव्यवस्था का मजबूत है, बल्कि इकोनॉमी में डिमांड की और भी गुंजाइश है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और भी गुंजाइश है आगे बढ़ने की, अपने आप को और आगे ले जाने की। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा ये संदेश जाता है कि आप आइए, पैसा लगाइए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ है।
Right. Well, global crude oil prices fell today as OPEC Plus decision to pause output hikes in the first quarter next year. Brent crude was trading over 1.3% down at $64.04 per barrel, and WTI crude was also trading 1.5% down at $60.14 per barrel when reports last came in. Over to gold and silver. Well, in the Indian bullion market, 24-carat gold price was trading nearly 0.4% down at 1,21,320 rupees per 10 grams, while silver was trading around 0.8% down at 1,46,810 rupees per kilogram.
आइए आपको लिए चलें MCX, यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक थोड़ा सा नरम पड़ रहा था, यानी सस्ता हुआ। ये 0.3% घटकर 1,21,081 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं दिसंबर आपूर्ति वाली चांदी लगभग 0.9% बढ़कर 1,46,475 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। सोने का फ्लिप फ्लॉप शुरू, यानी ऊपर नीचे जाना शुरू हो, लगातार तेज होता, या कैसा लग रहा आपका निवेश की दृष्टि से बताएं?
देखिए, सोना एक ऐसी कमोडिटी है जो कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक लिहाज से जो चुनौतीपूर्ण क्षण होते हैं उसी में चमकता है, और वो हमने देखा इस साल के शुरुआती 10 महीनों में। अब क्योंकि वो चुनौतियां थोड़ी सी कम हो रही हैं, तो सोने की चमक थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन मेरा कहना है कि सोना कितना सोना है इसके इंतजार करते रहे।
आइए आगे बढ़े, आपको श्रोताओं की ओर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उसके बाद समापन।
थैंक यू विशाल दहिया जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन द स्टूडियोज। एंड बिफोर वी क्लोज, फ्रेंड्स, एज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस क्लोज विद लॉसेस, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 25,600, मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन नेगेटिव टेरिटरी, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉल ओवर 1%। एंड फ्रेंड्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। दिस इज माई सेल्फ Kalima Aneja Dang and my co-anchor Manoj Patak signing off for now. So, namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। मार्केट भरता।